हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 1 से लेकर प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में मैत्रेय से विदुर की वार्ता के विषय में बताया गया है और पहले 16 श्लोकों में विदुर जी मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न करते हैं, तो आज हम उन्हीं को पढ़ने का प्रयास करेंगे जहां तक संभव होता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेश
जिघासया
अध्याय 5 जिसका शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाच द्वारिध्युनत्या ऋषभ करुणा मैत्रेयमासीनमागाध बोधम् क्षतोपसिद्ध्या च्युतभावसिद्ध प्रपच्च सौशील्यगुणा वृद्धिद्या द्वारिध्युनत्या ऋषभ करुणा मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् क्षतोपसिद्ध्या च्युतभावसिद्ध प्रपच्च सौशील्यगुणा वृद्धिद्ध। शब्दार्थ
श्री शुक उवाच अर्थात शुकदेव गोस्वामी ने कहा द्वारी यानी उद्गम स्टार्ट द्युनद्या अर्थात स्वर्ग लोक की गंगा नदी वह गंगा नदी जो स्वर्ग लोक से स्टार्ट हुई है ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ कुरुणाम अर्थात कौरवों के जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी अथवा भगवत भक्त हैं वे स्वर्ग से निकली हुई गंगा के उद्गम गंगा जिसके उद्गम स्वर्ग है वहां पर पहुंचे और वहां पर मैत्रेयम अर्थात मैत्रेय से आसीनम बैठे हुए अगाध बोध अगाध ज्ञान का क्षत्ता विदुर जी को कहते हैं उपसृत्य पास आकर अच्युत भगवान भाव अर्थात चरित्र सिद्ध अर्थात पूर्ण प्रपच्च सौशील्य गुणा प्रपच्य उन्होंने पूछा सौशील अर्थात सुशीलता गुण अभितृप्त अर्थात दिव्य गुणों से तृप्त। अनुवाद शुकदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर जो कि भगवत भक्ति में परिपूर्ण थे स्वर्ग लोक की नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे जहां विश्व के अघात विद्वान महामुनि मैत्रेय आसीत थे मद्रुता से ओतप्रोत में पूर्ण तथा आध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं विदुर पहले से अच्युत भगवान की शुद्ध भक्ति करने के कारण परिपूर्ण थे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि वो ओतप्रोत थे भक्ति से भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण भगवान तथा जीव स्वभावतः गुणात्मक दृष्टि से एक हैं किंतु मात्रा की दृष्टि से भगवान किसी भी प्राणी से बहुत विशाल है क्यों भगवान क्या है भगवान और जीव में क्या अंतर है उनकी क्वालिटीज सेम हैं पर क्वांटिटीज में क्या क्या डिफरेंस है भगवान विभु है और जीव अणु है भगवान समुद्र है तो जीव एक बूंद है तो श्री प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं किंतु मात्रा की दृष्टि भगवान किसी भी प्राणी से बहुत विशाल है वे सदा च्युत सदा अच्युत हैं, जबकि जीव माया के अधीन होने के कारण किसी भी समय डगमगा सकते हैं। विदुर पहले से ही अच्युत भाव होने के कारण बद्ध जीव के पतनशील स्वभाव यानी च्युत को लांग चुके थे। जीवन की यह अवस्था अच्युत भाव सिद्ध कहलाता है। यहाँ पर क्योंकि विदुर जी को सिद्ध कहा गया है ना, क्षतोपसृत्या च्युत भाव सिद्ध, तो इस लाइन को श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कोई भगवान के भाव में परिपक्व हो जाता है और अपना संपूर्ण सर्वस्व जो है वो भगवान पर ही निछावर कर देता है, तो फिर वो भी साधारण जीवों की स्थिति जो कि च्युत होती है, जैसे हम लोग हैं, हम परिस्थिति के कारण डकमगा जाते हैं, अपराध कर बैठते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर अनुकूल परिस्थिति होती है तो पुनः हमें एहसास होता है। लेकिन विदुर जी इन समस्त इस जो पतनशील स्वभाव है उसको लांग चुके थे, इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जीवन की यह अवस्था अच्युत भाव सिद्ध कहलाती है, अर्थात भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त अवस्था। इसलिए जो कोई भी भगवत भक्ति में लीन रहता है वह मुक्त आत्मा है और उसमें सारे प्रशंसनीय गुण रहते हैं। विद्वान ऋषि मैत्रेय हरिद्वार में गंगा के तट पर एकांत स्थान में बैठे थे और विदुर जी भगवान के पूर्ण भक्त थे तथा समस्त दिव्य सद्गुणों से युक्त थे। जिज्ञासावश उनके पास पहुंचे। यहाँ शिला प्रभुपाद जी एक सुंदर बात बता रहे कि भले ही कोई जीव भगवत भक्ति में परिपूर्ण हो, भले वो सिद्धावस्था तक पहुंचता है, लेकिन फिर भी जब वो भगवान के किसी शुद्ध वैष्णव से मिलता है तो अगर वो ज्ञान में और भक्ति में बढ़ा चढ़ा है तो विनम्रता से उसका आदर करके तद्विधि प्रणिपात देना, उसको प्रणाम करना चाहिए और उनसे भगवान के विषय में पूछना चाहिए। और इस वार्तालाप से केवल उन दोनों का ही नहीं, बोलने वाले और श्रवण करने वालों का ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। आज विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा है, तभी तो वेद व्यास ने उसको लिखा है ना, और जब उसको लिखा है तभी हम जैसे अशुद्ध और अपवित्र जीव जो कि भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते, इनकी वार्ता को श्रवण करके कुछ कुछ भगवान का आभास कर सकते हैं। तो आगे विदुर जी जो हैं वो प्रश्न पूछते हैं, वे कहते हैं,
विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै दुख वान्यतु पारमं वा विन्देत भूयस् तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यतु पारमं वा विन्देत भूयस् तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन।
अत्यंत ही सुंदर प्रश्न है। विदुर जी अपने कल्याण के नहीं बल्कि हम सब का एक बहुत ही गहरा सवाल है। हमेशा हमारे मन में यह सवाल होता है और उसी सवाल को पूछते कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको। सुखाय अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए, कर्माणि मतलब सकाम कर्म करोति, हर कोई करता है लोको इस जगत में। इस जगत में हम देखें प्रत्येक जीव कार्य क्यों करता है, जब से जीव जागता है तब से लेकर जब से जीव सोता है, और भी यदि तीव्रता से देखा जाए तो जिस क्षण उसका जन्म होता है उससे लेकर मृत्यु पर्यंत वो सिर्फ एक ही वस्तु प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, और वो है सुख। लेकिन विदुर जी कहते हैं, न तय सुखम वान्य दुपारमम, न कभी नहीं ता उन कर्मों के द्वारा सुखम कोई सुखवा अथवा अन्यत भिन्न रीति से उपारमम अर्थात तृप्ति वा अथवा विन्देत भूयस तत एव दुखम, उन कर्मों से किसी भी कारण उनको सुख तो नहीं मिलता, अथवा क्या होता है विन्देत प्राप्त करता है भूय इस विपरीत इसके विपरीत तत ऐसे कार्यों के द्वारा एव निश्चित ही दुखम कष्ट। हम हर कार्य सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं ना, जैसे कोई विवाह करता है, क्या क्या करने के लिए विवाह करता है, सिर्फ और सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए। विवाह करने से उसको क्या मिलता है, है ना, उसके जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। कोई व्यक्ति संतान उत्पत्ति करता है किसके लिए करता है, जिस दिन से गर्भ में संतान आती है उस दिन से लेकर उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ ही रही हैं, और कुछ भी हो जाए संतान को, भले वो अच्छा भी है, वो अगर संतान बुरा निकला फिर तो जीना ही हराम हो जाता है, लेकिन अगर वो अच्छा भी है, उसको कुछ हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी कभी है ना एक्सीडेंट हो गया, या फिर कभी मार्क्स कम आ गए, या फिर और उसकी है ना रिक्वायरमेंट्स पूरे करना, हर वक्त तो दुख ही दुख है ना। तो यहाँ साफ साफ बता रहे हैं, न तय सुखम वान्य दुपारमम, उस सुख की इच्छा से कार्य किए जाने पर उन्हें सुख तो कभी नहीं मिलता, बल्कि विन्देत भूयस तत एव दुखम, बल्कि जितना जितना सुख प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत में आगे बढ़ता है उतना ही उतना उसको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। उसके दुखों में इसके विपरीत उसके ऐसे कार्यों से उसके दुखों में वृद्धि होती है। और आगे यद यदत्र युक्तम भगवान वदेना, यद अत्र जो अत्र मतलब परिस्थितिवश, युक्तम सही मार्ग भगवान हे महात्मन, वदेत कृपा कर कृपया प्रकाशित करें, न यानी हमको। अनुवाद देखिए, विदुर ने कहा हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे ना तो तृप्ति मिलती है ना ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है, इसीलिए कृपा करके हमें इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, विदुर ने मैत्रेय से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, किंतु उनका मूल अभिप्राय यह नहीं था। उद्धव ने विदुर से मैत्रेय मुनि के पास जाकर भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, लीलाओं, पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने के लिए कहा था। अतएव जब विदुर मैत्रेय के पास पहुंचे तो उन्हें केवल भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलतावश उन्होंने एकदम भगवान के विषय में नहीं पूछा, प्रत्युत ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जनसामान्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण का हो सकता था। इसीलिए सामान्य मनुष्य भगवान को नहीं समझ सकता, सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन के असली स्थिति जाननी चाहिए। मोह में आकर मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्म फल के जंजाल में और अधिक उलझता जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज सकता। इस संदर्भ में एक सुंदर गीत है, जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने यह घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वंस हो गई क्योंकि घर में अप्रत्याशित रूप से आग लगा दी गई। प्रकृति का नियम ऐसा ही है, हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर रहने से सुखी बनना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि यह उस योजना में आग लगा देता है। सकाम कर्मी अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता, ना ही सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति मिलती है। अब एक और बात जो बहुत ही सुंदर है, सुखाय कर्माणि करोति लोको। कर्माणि का मतलब होता है सकाम कर्म। अब कोई भी सकाम कर्म जो होगा, जब जीव करेगा तो इस जगत में तो उसे सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि सुख है नहीं, और जो भी वस्तु मिलती है वो दुख प्रदान करने वाली, लेकिन उस कर्मों के कारण उसको उसका प्रतिफल मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो वो अच्छे लोकों में जाता है, स्वर्ग में जाता है। यदि वो बुरे कार्य करता है, सुख प्राप्त करने के लिए करता है ना, आज जीव सुख प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है, कभी झूठ बोलता है, तो कभी किसी की हत्या तक कर देता है, कभी लूटता है, मारता है, कुछ भी करता है सुख प्राप्त करने के लिए। वो सोचता है हमें सुख मिलेगा, लेकिन इसकी रिजल्ट में उसको नरक में जाना पड़ता है। तो ये जन्म जन्मांतर का जो सर्कल है वो बढ़ता है इन सकाम कर्मों के कारण। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, वो डायरेक्ट से भगवान के लिए नहीं पूछ रहे हैं, साधारण मनुष्य का कल्याण कैसे हो, वो पूछ तो यही रहे हैं ना कि असली सुख कैसे मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली वो भगवान के विषय में ही पूछ रहे हैं, और वो जो भी प्रश्न करेंगे उसके उत्तर में भगवान की भक्ति का ही उत्तर आएगा। आगे पूछते हैं, अब विदुर जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वे कहते हैं,
जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवा अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायैह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवा अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायैह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य।
शब्दार्थ, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात्। देवात् कहते हैं माया के प्रभाव से। जब एक जीव इस संसार में आता है तो जब तक वो माता के गर्भ में होता है भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान आप मुझे इस नरक से निकालो, मैं संसार में जाकर भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करूँगा। लेकिन क्या होता है, जनस्य सामान्य व्यक्ति कृष्णात् विमुखस्य, कृष्णात् भगवान कृष्ण से विमुखत, अर्थात भगवान से कृष्ण से मुंह फेर लेते हैं जब संसार में आते हैं। किसके कारण, मायात् दैवात् अर्थात माया के प्रभाव से। और फिर अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य, अधर्मशीलस्य मतलब अधर्म में लगे होते हैं। भगवान जिन कार्यों से मना करते हैं वही अपराध करने लगते हैं। और फिर सुदुखितस्य, सदैव दुखी रहते हैं। वो सोचते हैं कि अपराध करने के उपरांत उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सदैव सुदुखितस्य, हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन ऐसे दुखी और कृष्ण विमुख लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए अनुग्रहायैह चरन्ति नूनम्, अनुग्रह उनके प्रति दयालु होने के कारण यह इस जगत में चरन्ति विचरण करते हैं, नूनम निश्चित ही भूतानि भव्यानि जनार्दन, भूतानी लोक बहव्यानी अर्थात अत्यंत परोपकारी आत्माएं जनार्दन से, वो भगवान के शुद्ध भक्त। यह साफ लिखा हुआ है कि इह अर्थात अनुग्राह ये भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, वो इस जगत में रहने के लिए नहीं हैं। उनको तो भगवान के साथ रहना चाहिए, भगवान के धाम में रहना चाहिए। परंतु हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए, जो भगवान से विमुख हो जाते हैं इस माया के कारण, वो माया की ओर आकर्षित होते हैं और भगवान से दूर होते जाते हैं, ऐसी दूषित और पतित आत्माओं के ऊपर अनुग्रह करने के लिए अनुग्रहाये हचरन्ति नूनम, वो मुक्त आत्माएं भी इस संसार में विचरण करती रहती हैं। अनुवाद देखिए, विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, प्रभु महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकृपा करने के लिए, अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं, जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से विमुख मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है, कि भगवान की आज्ञा का पालन करे, भगवान से प्रेम करे, भगवान की सेवा करे। जीव स्वभाव से जीव जो है वो भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, लेकिन हमारे अपने अपराधों के कारण मति और हृदय इतना मलिन हो जाता है, जिसके कारण जीव भगवान की अधीनता को स्वीकार नहीं करता। और उससे क्या होगा, वो भगवान पे कोई इसका असर नहीं होता कि जीव जो है वो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है, परंतु भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगना पड़ता है उस जीव को जो भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं करता। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य नौन्यादिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि आप कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कुछ भी करते हो, उन भगवान की दिव्य भक्ति प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य नौन्यादिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है, फिर वो भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो फिर हम जो इतने सारे कार्य करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं सारी, अपने धर्म का पालन करते हैं, वो सब क्या है? जब तक हम ये सोच कर करते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम ये सब कार्य करें, तब तक वो विरुद्धता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि भगवान की प्रशंसा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान ने मुझे ये ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की हैं, इन सारे कर्तव्यों को मुझे पालन करना है, खुश कृष्ण को करना है, तभी वो कार्य भक्ति बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते, समस्त सकाम कर्म अनुभव गम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध हैं, और जो जीव ऐसे विद्रोह पूर्ण कार्यों में लगा हुआ है, वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्रायः तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान के विरुद्ध कार्य करेंगे तो प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित किए जाएंगे। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर आते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी परामर्श देते हैं कि जीव से भगवान की भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि जीवा स्वभावतु दुष्टः, उसका स्वभाव दुष्ट हो गया है, उसका हृदय मलिन हो गया है। इसलिए यदि वो पुनः अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति जीवर स्वरूप कृष्णदास वो पुनः भगवान की अधीनता को स्वीकार करना चाहता है तो उसका एक ही उपाय है कि वो ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति करे जो स्वयं सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जब जीव ऐसे शुद्ध आत्माओं की संगति करता है तो पुनः उसे भगवत भक्ति और भगवत प्रेम जो हृदय में सुषुप्त अवस्था में है वो पुनः जागृत हो जाते हैं और भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है, माया का प्रभाव कम होने लगता है। वास्तव में भक्तों, हम जो भी साधना कर रहे हैं उसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाए। ये जो माया का आकर्षण है, जो भौतिक प्रकृति का आकर्षण है, वस्तु और व्यक्तियों की ओर जो हमारा भाव और प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो समाप्त हो जाए और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें शुद्ध भक्त जो कि भगवान के आदेश अनुसार इस भौतिक जगत में विचरण करते रहते हैं उनको खोजना चाहिए और उनकी संगति करनी चाहिए। आगे विदुर जी कहते हैं,
तत साधु भरिया दिशवर्त्मशम्ना सौराधितो भगवान् येन पुंसा रिधि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम् तत् साधुवर्या दिशवर्त्मशम्ना सौराधितो भगवान् येन पुंसा रिधि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम्।
शब्दार्थ तत् साधुवर्ण्यम्, तत् मन इसलिए, साधुवर्ण्यम् हे संतों में सर्वश्रेष्ठ, आदिश आदेश दे, वर्तम अर्थात मार्ग, शम शुभ न हमारे लिए, क्योंकि आप भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और इस भौतिक जगत में हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए हैं, तो कृपया हे संतों में सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए कुछ ऐसा आदेश करें जो हमारे लिए शम हो, शम अर्थात शुभ हो। संराधितो भगवान ये न पुंसाम, संराधित यानी पूरी तरह सेवित भगवान यानी भगवान ये न जिससे पुंसाम जीव का हृदय स्थित अर्थात हृदय में स्थित यच्छति प्रदान करता है। भक्ति पूते अर्थात शुद्ध भक्ति को ज्ञानम अर्थात ज्ञान, सतत्वादि गमम पुराणम, स मतलब वह तत्व यानी सत्य, आदिगमम अर्थात जिससे कोई सीखता है, पुराणम प्रामाणिक या प्राचीन। अनुवाद देखिए, इसलिए है महर्षि आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो जो प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले ही बताया जा चुका है कि ज्ञान की बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति तीन विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है, यद्यपि वे एक ही है। सबसे समर्थ योगी आध्यात्मवादी भगवान का शुद्ध भक्त है। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 1.2.11 में बताया गया, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो तत्वदृषि हैं वो भगवान को तीन प्रकार से जानते हैं। कुछ ब्रह्म मानते हैं तो कुछ हृदय में बैठे हुए परमात्मा के स्वरूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते, सबसे समर्थ योगी भगवान का शुद्ध भक्त है, जो भगवान को भगवान के स्वरूप में स्वीकार करता है। जो सकाम कर्मी या दार्शनिक चिंतन से रंच मात्र भी कुलुषित नहीं होता, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको दार्शनिक चिंतक फिलोसफी का कोई रंच मात्र भी वो कुलुषित नहीं होता है, और ना ही सकाम कर्मों के द्वारा। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। केवल ऐसे ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं, जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम पहुंच सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयन्ते। तो जब जीव भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है और हर समय सर्वत्र भगवान का ही भजन करता है, तो फिर भगवान हृदय में ज्ञान देते हैं। यहाँ जैसे बोला, रिधि स्थितो यच्छति भक्तिपूते। वो शुद्ध भक्त जब भगवान का सुमिरन करता है तो हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान के उपदेश को वो बड़ी सरलता से स्वीकार करता है और समझ लेता है। जब भगवान भक्ति की भक्ति से तुष्ट होते हैं तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। श्रील प्रभुपाद जी कहते, ज्ञानी योगी तथा कर्मी जन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की उपेक्षा नहीं कर सकते। वे ना तो भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, ना ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। तो ये जो ज्ञानी है, ज्ञान कर्म योग ज्ञान योग सकले विषयर बांड, कर्म कांड ज्ञान कांड सकले विषयर बांड, तो इनके द्वारा भगवान को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वो भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति के द्वारा संतुष्ट नहीं करते। भगवान कर्मियों और ज्ञानियों के द्वारा आनंदित नहीं होते। भगवान तो उस भक्त की निश्चल प्रेमा भक्ति से संतुष्ट होते हैं। जो भक्त भगवान से प्रेम करता है, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैधी भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है और महान आचार्यों द्वारा इनकी संपुष्टि हुई है। ऐसा अभ्यास नवदीक्षित भक्त को राग भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है। श्रील प्रभुपाद जी सावधान करते हैं कि भक्ति आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हो, भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए वैधी भक्ति जो शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार है वो आचार्यों के द्वारा संपुष्टित है, और वो शास्त्रों में बताई गई है, तो उसी तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप वैधी भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है, ऐसा अभ्यास नवदीक्षित भक्त को राग भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है, जिसमें भगवान चैत्य गुरु अर्थात अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं। जब राग आत्मिक हो जाती है, जब जो आज मैकेनिकल होता है
वो स्वाभाविक हो जाता है। वो कथा जो आज हम मैकेनिकली ये कि सुननी है ये करके सुनते हैं, तो वो कथा हमारा जीवन बन जाती है। ये नाम जब जो आज हमें ऐसा लगता है कि 16 मला पूरी नहीं हो रही है, तो वो नशा बन जाता है। जब ऐसा होने लगता है फिर क्या होता है, जिसमें भगवान चैत्य गुरु अर्थात अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं, फिर बात करते हैं। रहते तो वो हैं ही हृदय में। हम कितने मूर्ख हैं जो संसार में ढूंढते हैं उसे और सोचते हैं कब मिलेंगे कब मिलेंगे। बस प्रेम करो, कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय में जाना। तो जब प्रेम हो जाता है तो वो हृदय से उत्तर देते हैं। भक्तों के अतिरिक्त साई आध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि वे अति चेतना तथा व्यष्टि चेतना को एक ही समझने की गलती करते हैं। अभक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देश पाने के अयोग्य बनाती है। अतः वे भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जब अनेक जन्मों के बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आते हैं कि भगवान आराध्य हैं और भक्त भगवान से एक होते हुए भी भिन्न हैं, तभी वे भगवान वसुदेव की शरण ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होता है। दिग्भ्रांत अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने के लिए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन है, जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अद्वैतवादी होते हैं निर्विशेषवादी, वो पहले तो भगवान को और जीव को एक ही समझते हैं। ये गलती करते हैं, वो समझते हैं कि भगवान के अंदर जीव मिल जाएगा तभी वो संतुष्ट होगा। तब वो ऐसा सोचते हैं तो फिर भगवान के साथ प्रेम का तो कोई संबंध वो निर्माण करते ही नहीं है। लेकिन बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कृष्ण कहते हैं बहुत सारे जन्म जब गुजर जाते हैं तो अद्वैतवादी को होश आता है, फिर वो जानते हैं कि भगवान में मिलना नहीं है, भगवान से प्रेम करना है। तो फिर क्या होता है, वो भगवान से प्रेम करना प्रारंभ करते हैं, भगवान की शरण वासुदेव शरण इति शरण ग्रहण कर सकते हैं, और यहाँ से उनकी भक्ति प्रारंभ होती है। आगे दिग्भ्रांत अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने के लिए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन है। भगवान ने भी कहा क्लेशोधिका तरस्ते शाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही कते दुःखम देहवत फिरवाप्यते, कि जो भगवान के निर्विशेष निराकार स्वरूप में आकर्षित होते हैं उनके लिए आगे उन्नति करना बहुत कठिन है, क्योंकि निराकार पथ अव्यक्ता ही गतिर दुखम, उसकी जो गति है मंजिल है वो दुखदायक है, क्योंकि वो भगवान को तो प्राप्त करने वाली है ही नहीं, और क्योंकि उसमें प्रेम का मिश्रण नहीं होता है इसलिए उसकी स्पीड भी कम है गति भी कम है। तो यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्तिमयी सेवा से प्रसन्न होते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई जीव उनकी भक्तिमयी सेवा में प्रवृत्त होता है। तो विदुर ने पहुंचते ही अनेक नवदीक्षित भक्तों की ओर से मैत्रीय से उस भक्तिमयी मार्ग सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। तो विदुर जी, हम जैसे भक्त जो अभी तक नवदीक्षित जिनको अभी भक्ति के विषय में कुछ नहीं पता, उनके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, यह हम सबके ऊपर विदुर जी का बहुत बड़ा उपकार है। कि वो भगवान की भक्ति, भगवान हृदय में बैठे हुए भगवान किस प्रकार से हमें उत्तर देंगे, हमसे प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, उसके विषय में पूछ रहे हैं। आगे विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं,
करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवास्तदेश यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतंत्रो भगवास्त्रदेश यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते।
करोति कर्माणि कृत अवतार, करोति मतलब करता है, कर्माणि मतलब दिव्य कर्म, कृत यानी स्वीकार करके अवतार, अवतार तो भगवान विभिन्न अवतारों को स्वीकार करता है और भगवान क्या क्या कार्य करता है। यानी आत्मतंत्र, यानी मतलब वे सब, आत्मतंत्र मतलब स्वतंत्र भगवान, भगवान जो भगवान स्वतंत्र हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, वो स्वतंत्र स्वामी और समस्त यथा ससर जग्र इदम निरीह, यथा जिस तरह ससर्ज यानी उत्पन्न किया, उग्रे अर्थात सर्वप्रथम इदम इस विराट जगत को, निरीह यद्यपि इच्छा रहे, हालांकि भगवान को कोई इच्छा तो है ही नहीं, फिर भी भगवान ने सर्वप्रथम इस भौतिक जगत को कैसे निर्माण किया और संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विद, संस्थाप्य अर्थात स्थापित करके, वृत्तिम जीव को पार्जन का साधन, वृत्तिम जगत ब्रह्मांड का, विद्धते अर्थात जिस तरह वह नियम करता, नियमन करता है, कि भगवान को कोई इच्छा नहीं है फिर भी भगवान विभिन्न अवतारों को धारण करता है और किस तरह से यथा ससर जाग्र इदम निरीह इस भौतिक जगत का निर्माण करता है, भौतिक ब्रह्मांड का विराट जगत को वो किस तरह से उत्पन्न करता, उसके विषय में पूछ रहे हैं। अनुवाद देखिए, हे महर्षि कृपा करके बतलाइए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों की इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी है तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतार को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं जिसके परिपालन के लिए नियामिक सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं, व्यवस्थित हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं जिनसे कारण दक्षाई विष्णु, कारण वशाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु और क्षीरो दक्षाई विष्णु, ये तीनों पुरुष अवतार विस्तार पाते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान के की बहिरंग शक्ति के अंतर्गत तीन पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे कि बकरी के गलस्तनों में दूध की खोज करना। भगवान स्वतंत्र हैं और इच्छा रहित हैं, वे भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते। जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं, वस्तुतः भौतिक जगत उन बद्ध जीवों के मोहमय भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है जो अनादिकाल से भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते हैं, किंतु भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान जो है वो अपने से ही तीन विष्णु को प्रकट करते हैं, तीन पुरुष अवतार, कारण दक्षाय विष्णु, जो कि प्रत्येक जो ब्रह्मांड है उसके उत्पन्न करने वाले हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो एक ब्रह्मांड के अंदर उत्पन्न होते हैं, और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु जो प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान होते हैं। तो ये संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत तीन पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है। तो ये जो पूरी भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसको संचालित ये तीनों पुरुष करते हैं, और ऐसा कभी नहीं होना सोचना चाहिए कि प्रकृति जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, और भगवान स्वतंत्र हैं और इच्छा रहते हैं, लेकिन फिर भी ये भगवान जो है वो सृष्टि की इच्छा इसलिए नहीं करते कि भगवान को कितना दिल कर रहा है कि मुझे ना सृष्टि देखनी है, मुझे संसार बनाना है, या फिर भगवान की कोई इच्छा रह गई है तो भगवान जो है वो सृष्टि का निर्माण करते। जैसे संसार में हम लोग कोई भी काम करते, घर क्यों बनाते, क्योंकि हमें रहने के लिए जगह चाहिए होती है, बिजनेस क्यों करते, क्योंकि हमको धन चाहिए होता, लेकिन भगवान ये संसार का निर्माण करते हैं उन भद जीवों के मोहमय भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है जो अनादिकाल से भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते हैं। हम सब के लिए भगवान ने इस संसार का निर्माण किया ताकि हमको एक और चांस मिले भगवान की भक्ति करने के लिए। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है, अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी उन जिन पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि होने पर विचलित होते हैं, किंतु जब भी पृथ्वी पर कोई जीव आता है भगवान तुरंत ही उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर लेते हैं। यानी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोगों आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल लोग जो हैं वो जनसंख्या के बढ़ने पर सोचते हैं कि लोग की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी तो पृथ्वी पर खाना कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। श्री प्रभुपाद जी ऐसे नहीं कह बोलते, ऐसा नहीं है, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। जैसे ही कोई जीव इस संसार में आता है कभी वो उसको ये नहीं सोचना पड़ता अरे मैं संसार में जाऊंगा तो मैं अपना झूला कहाँ रखूंगा, मैं संसार में जाऊंगा तो क्या पीऊंगा। भगवान की माता के भगवान जो है वो माता के स्तन में उसके आने से पहले ही दूध प्रदान कर देते हैं, और उसके लिए ऑक्सीजन, उसके लिए सूर्य प्रकाश, उसके लिए जल वायु इत्यादि हर वस्तु पहले से ही प्रदान करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जब पृथ्वी पर कोई जीव आता है तो भगवान तुरंत ही उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था कर देते हैं। अन्य योनियां जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होते। अभी देखो मच्छर ने कभी सोचा कि भाई इतने सारे मच्छर हो जाएंगे तो लोग वो मच्छर कैसे जिएंगे। कुत्ते कभी नहीं सोचते कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो खाएंगे कहां से। सुअर एक एक रात में 10-10 बच्चों को जन्म देता है, कभी नहीं सोचता बेचारे खाएंगे कैसे, वो नहीं चिंता करते। लेकिन एक कबूतर जो है वो 4-4 अंडे देता है और साथ में उनको सींचता है, कभी नहीं सोचता क्या खाएंगे। ये मनुष्य जो है ना वो इतना श्रद्धाहीन है, इतना भगवान के ऊपर उसको विश्वास नहीं है, वो सोचता है कि अगर ज्यादा लोग होंगे तो उनको पालना मुझे पड़ेगा और ये बहुत कठिन होगा। लेकिन भगवान ने सबकी जिम्मेदारी उठाई है, पर श्रील प्रभुपाद जी को कह रहे हैं कि अन्य योनियां जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है भरण पोषण के लिए चिंतित नहीं होते, वे कभी भी भूख से मरती नहीं है, मरती नहीं देखी जाती। यह तो एकमात्र मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है और प्रशासनिक काव्य व्यवस्था को छिपाने के लिए यह दलील दी जाती है कि जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। यदि संसार में कोई अभाव है तो वह ईश चेतना का अभाव है, अन्यथा भगवत कृपा से अभाव किसी वस्तु का नहीं। श्री प्रभुपाद जी बोलते किसी वस्तु की कमी है ना तो वो तुम्हारी श्रद्धा की भगवान में तुम्हारे प्रेम की कमी है, हृदय के अंदर जो भगवत प्रेम सो गया है ना उसको जगाने की कमी है, बाकी संसार में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दुखी होना है तो इस बात से होना चाहिए कि आज संसार में लोग ईश चेतना से विहीन है, तो उसी ईश चेतना को जागृत करने के लिए विदुर जी जो हैं वो उद्धव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे भगवान के विषय में बताइए।
यथा पुनः स्वे कैनम निवेश शेते गुहायां सनिवृत्ति वृत्ति योगेश्वरादीश्वरैकैतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् यथा पुनः स्वे क इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्ति योगेश्वरादि वरैकैतत् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्। शब्दार्थ यथा पुनः स्वे क इदं निवेश्य, यथा मना जिस तरह, पुनः फिर, स्वे अपने में, के आकाश के रूप में या विराट स्वरूप में, इदम निवेश यह प्रविष्ट होकर भगवान अपने को विराट स्वरूप में प्रवृत्त करते हैं। शेते गुहाया सनिवृत्ति वृत्त, शेते अर्थात शयन करता है, गुहायाम अर्थात ब्रह्मांड के भीतर, स वही भगवान निवृत्त बिना प्रयास के वृत्ति आजीविका का साधन, भगवान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? योगेश्वरादीश्वर एक, योगेश्वर वो समस्त योगियों के स्वामी है, अधीश्वर सभी वस्तुओं के स्वामी है, एक अद्वितीय है, एतद्यः अनुपविष्ट बहुदायत, अनुपविष्ट अर्थात बाद में प्रविष्ट होकर, बहुधा असंख्य प्रकारों से, यथा जिस तरह असित विद्यमान रहता है। अनुवाद, वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी हैं और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सृष्टि के पालन तथा संहार विषयक प्रश्न जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के अनेक भागों में हुआ है विभिन्न कल्पों से संबंधित रखते हैं। अतः विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में हुआ। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक है, वो क्या है कि सृष्टि का जो सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार जो है वो श्रीमद् भागवतम में अनेक भागों में बताया गया, लेकिन ये क्योंकि विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं, हर कल्प में सृष्टि का संहार भी होता है और पुनः निर्माण भी होता है, तो शीला प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं कि अतएव विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका उत्तर या वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है।
सिद्धांत वही है कि भगवान ने ही उनको बनाया है और भगवान ही उन पर कंट्रोल करते हैं, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों में यत किचित अंतर रहता है। अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा अंतर रहता है, बारीकी से अगर देखा जाता है तो फिर कुछ कुछ उसमें भिन्न दिखता है। विराट आकाश भगवान का भौतिक शरीर है जो विराट रूप कहलाता है, भगवान का जो विराट स्वरूप है उसके विषय में बताया। और समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात भगवान के हृदय में टिकी हुई हैं। अब जब एक कल्प समाप्त होता है तो सारी भौतिक जो शक्तियां हैं वो भगवान के हृदय में आकर टिक जाती हैं। अतएव आकाश से लेकर जो स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है पृथ्वी तक, हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। अब जो कुछ भी वस्तु है वो ब्रह्म कहलाती, क्यों? सर्व खलम इदम ब्रह्म, भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, हम सब भगवान के ही अंश हैं, तो सब कुछ ब्रह्म कहलाता है। और वे अद्वय है, जीव पराशक्ति है जबकि पदार्थ अपराशक्ति है, श्रीमद् भगवत गीता में बताया जाता है। अपरेयम इतस्तन्यन प्रकृतिम विद्धि में परा जीव भूताम्य महाबाहो यदम धारयते जगत। और इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है जो भगवान के हृदय में स्थित है। अब यहाँ पर क्या है, श्रील प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं। इन्होंने पूछा था ना कि किस तरह से संसार की उत्पत्ति हो रही, तो श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा सा संकेत बता रहे हैं कि जो कुछ संसार में है वो भगवान का ही अंश है, भगवान के नियंत्रण में है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। और सृष्टि का निर्माण अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्थानों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बताया गया है क्योंकि कल्प भेद है। उसके बाद आना विदुर जी पूछते हैं,
क्रीरन विदत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माय अवतार भेदय मानोन तृप्यपीशावताना सुश्लोकमौलैश चरितामृतानि क्रीडन् विधत्ते द्विजगोऽसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतार भेद मानोन तृप्यपि सर्वताणां सुश्लोकमौलैश चरितामृतानि क्रीडन् विधत्ते द्विजगोऽसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदय मानो न तृप्यपीशावताम्ना सुश्लोकमौलैश चरितामृतानि।
शब्दात् क्रीडन् क्रीडन् विदत्ते जगत् द्विजगोसुरा, क्रीडम मतलब लीलाएं करते हैं, विदत्ते संपन्न करते हैं, द्विज द्विजन्मा गो अर्थात गौवे, सुराणाम अर्थात देवता, क्षेमाय मतलब कल्याण के लिए। भगवान देवताओं और गौओं के द्विजों के कल्याण के लिए विभिन्न अवतार में विभिन्न विभिन्न लीलाएं करते हैं। क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेद, पृथक पृथक अवतार लेकर। मनो न तृप्यत्यपि श्रवताणाम, यहाँ पर विदुर जी बहुत ही हृदय से भगवान की लीलाओं को श्रवण करने की उत्कंठा बताते हुए कहते हैं मनो न तृप्यत्यपि, मैं जितना भी श्रवण करता हूँ मेरा मन ना मना कभी नहीं तृप्यति अर्थात तुष्ट नहीं होता है, कितना भी श्रवण करता हूँ फिर भी श्रवण ताम्रम श्रवण करने के बावजूद भी मुझे आनंद तृप्ति नहीं होती है। स श्लोक मौल स श्लोक अर्थात शुभ मंगलमयी, मौले अर्थात भगवान की, चरिता अर्थात विशेषताएं अमृतानी अमर, भगवान की लीलाएं इतनी आनंदमयी हैं और जीव का शुभ मंगल करने वाली हैं, और ये भगवान की जो लीलाएं हैं उनको श्रवण करने से, क्योंकि भगवान गौ ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए आते हैं, तो इनको श्रवण करते मुझे कभी भी तृप्ति नहीं होती। अनुवाद देखिए,
आप द्विजों गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं होते। अब यहाँ बताएं, क्षेमा या कर्माण्य वतार भेदम, तो ये उद्धव जी सॉरी विदुर जी जो हैं वो मैत्रेय ऋषि से कहते हैं कि क्योंकि आप जो हैं वो द्विजों गौओं और देवताओं के कल्याण के लिए ही है यहाँ पर संसार में, तो आप भगवान के अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में बताइए, क्योंकि हम सबका कल्याण इसी में है कि हम भगवान के विषय में श्रवण करें। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद कहते हैं
कि भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य कूर्म वराह तथा नरसिंह रूपों में प्रकट होते हैं, और द्विजों गौओं तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने दो बार जन्म लिया है। जीव इस संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी द्विज के बारे में बताते हैं कि एक जन्म तो जीव का तब होता है जब माता के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन दूसरा जन्म तब होता है जब वो गुरु से दीक्षा लेता है। जो वास्तविक पिता बनता है, भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता हैं, किंतु अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकते हैं, किंतु प्रामाणिक गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होता है, क्योंकि उस पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्म होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा है। अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि माता पिता का संबंध तो सिर्फ इस जन्म का होता है, लेकिन ये जो जन्म का जो संबंध होता है जन्मे प्रभु से, ये गुरु के साथ जो हमारा संबंध होता है वो जन्म जन्मांतर तक होता है, क्योंकि गुरु शिष्य को तब तक नहीं छोड़ता जब तक शिष्य को भगवान के धाम तक नहीं लेके जाता, और भगवान के धाम में भी जाकर गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होती, शिष्य का कर्तव्य तब भी नहीं रहता है कि वो गुरु के आदेशों का पालन करे। और गुरु एक ही शुद्ध वैष्णव गुरु एक ही आदेश देता है कि भगवान की भक्ति करें। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक कोई गुरु स्वीकार नहीं करता तब तक वो इस योग्य हो ही नहीं सकता कि वो भगवान को प्राप्त करे। इसीलिए सभ्य व्यक्ति को द्विजन्म होना चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा है। मनुष्य शरीर को पूर्णता प्रदान करने के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह से बोझ्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्म तंत्र कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की पेचीदगियों को समझ सकता है। किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह फल शाक अन्न चीनी तथा दूध से युक्त भोज्य पदार्थ पर जीवन निर्वाह करे, बेल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने के
की कृषि प्रक्रिया में सहायता करता है। एक तरह से बैल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वे मानव जाति को दूध प्रदान करती है। अतएव किसी भी सभ्य मनुष्य के से उपेक्षा की जाती है वह बैल तथा गौओं को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे। अब यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते खाना तो हर कोई खाता है, लेकिन उससे शरीर पौष्टिक होता है, लेकिन मस्तिष्क के जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं उनका विकास करने के लिए विशेष रूप से गाय का दूध आवश्यक है। इसलिए हमको गाय का दूध अवश्य पीना चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि बैल अन्न उत्पादन करता है और गाय क्या करती है, वो दूध देती है, इसलिए सभी प्रकार से गाय और बैल का संरक्षण होना चाहिए। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीव आत्मा मनुष्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती हैं। अतः वे मनुष्यों की उपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। भगवान सभ्य मनुष्य गौओं तथा देवताओं को जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, विराह तथा नरसिंह रूप में। भौतिक सृष्टि की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है ताकि बद्ध जीवों को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। गोधन जीवन के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए सहायता के निमित्त है। अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम तो इस भौतिक जगत में रहते हैं तो हमारी लाइफ तो कोई है ही नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो ऐसी जीव आत्मा है, वो तो मनुष्यों से कई अधिक बेहतर जीवन बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती है, लेकिन फिर भी वो सब भगवान को जानते हैं और भगवान के भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं। उनके ऊपर जब भी कोई कष्ट आता है तो भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान सभ्य मनुष्य यानी कि जो गुरु स्वीकार करते हैं उनके और देवताओं के सबके रक्षक हैं, और उसके अतिरिक्त वो सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ बताया श्री प्रभुपाद जी ने आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं और सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप स्वरूप धारण करते हैं, मत्स्य, कच्छप, वराह, वामन। और देवता अथवा सभ्य मनुष्य के जो कहलाते हैं उनको गौधन के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि श्लोक में आया है गौ के बारे में, द्विज गो सुराणम। द्विज यानी ब्राह्मण, गो अर्थात गौ, और सुराणम अर्थात देवता। गौ, ब्राह्मण और देवताओं को की सुरक्षा भगवान करते हैं, तो जीवों को भी चाहिए कि वो गौधन की सुरक्षा करें। द्विजन्म सभ्य मनुष्यों गौओं तथा देवताओं की रक्षा के लिए भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतएव विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र हैं। किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है, और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तुतः समाचार पत्र एक घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और इसके बाद कूड़ादान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है, परंतु भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यह है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में
उन्हें सभ्य मनुष्यों द्वारा विगत 5000 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पढ़ते। विद्वानों तथा भक्तों के लिए वे चिर नवीन हैं और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती है। भगवान विदुर जी कहते हैं, मैं जितना सुनता हूँ, वैसे तो सुनता सुनता आया हूँ अब तक, लेकिन जितना भगवान के विषय में श्रवण करता हूँ उतना ही आनंद बढ़ता है, परंतु तृप्ति नहीं होती। तो विदुर ने मैत्रेय से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं का ना जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुनने से तृप्त नहीं हो पाए थे। भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है। अब श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, संसार के जो न्यूज़पेपर हैं, जो डाइजेस्ट हैं, जो स्टोरीज हैं, वो सब तो एक बार पढ़कर कभी भी इच्छा नहीं होती कि दोबारा पढ़ी जाए, क्योंकि उनमें कोई दिव्यता नहीं है, उनमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन भगवान के विषय में जो श्रवण करते हैं वो अनंत काल तक उसी तरह से स्वादु स्वादु पदे पदे प्रत्येक क्षण उसका स्वाद बढ़ता रहता है। तभी तो जो भक्त होते हैं उनकी तृप्ति नहीं होती, वो जितना भी श्रवण करते हैं उनकी इच्छा होती है और भी। मानो न तृप्यत्यपि श्रावतान, उद्धव जी सॉरी विदुर जी भी कहते हैं मैत्रेय ऋषि को कि मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, तो कृपया उन लीलाओं को मुझे श्रवण कराइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।